الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا جو کوئی مجھ پر ایک بات درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گنا معاف فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ بہت ہی یوں سمجھیے کہ اہم بھی ہے اور اسے لیا بھی ہم نے بہت جلدی ہے۔ جو عصر کے بعد جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اس میں خود اعتمادی پر بات ہوئی، سوال ہوا، پھر تو مجھے ڈاکٹر زیرک جو ہمارے یو کے لیسٹر میں ہوتے ہیں ان کا میسج آیا کہ ہمیں اس موضوع پر ڈسکس کرنی چاہیے۔ تو میں کہا بھائی آج ہی کر لیتے ہیں، تو بات ہی خود اعتمادی کی ہو رہی ہے۔ تو اپنے رب پر بھروسہ کرنا یہ بہت بنیادی بات ہے اور پہلے بیان کیے ہوئے ہیں اور اس پر وہ کیا کہتے ہیں پہلے سے کچھ نہ کچھ ڈسکشنز ہوئی ہوئی ہیں۔ پھر چونکہ ڈاکٹر زیرک نے کہا تھا کرتے ہیں تو میں کہا یہ تو اصل ٹاپک تو ہے ہی ان کا، تو خود اعتمادی پر بات کر لیتے ہیں۔ جب بھی خود اعتمادی پر بات یعنی پور اعتماد ہونا، جب بھی یہ موضوع چلے نا، سب سے بنیادی بات ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھے کہ ہوگا ہوئی جو اللہ چاہے گا۔ یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب پر بندہ کامل اعتماد کرتا ہے، کامل بھروسہ کرتا ہے اور اپنے رب کی مدد پر اس کو بہت ہی زبردست یقین ہوتا ہے کہ بس یہ اللہ میری مدد فرمائے گا، اللہ مجھے کامیاب کر دے گا، اللہ میرے لیے راستے نکال دے گا۔ کیونکہ بعض اوقات خود اعتمادی کی جب بات چلتی ہے، پور اعتمادی کی بات چلتی ہے، تو انسان اپنی عقل پر، اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرنے میں کچھ زیادہ ہی اوور ریئیکٹ کر دیتا ہے۔ حالانکہ یہی عقل ہے جب اللہ چاہے گا چھین لے گا، یہی صلاحیت ہے اللہ جب چاہے گا سل فرما لے گا۔ تو یہ چیزیں ان کو تھوڑا سا مسلمان ہیں ہمیں تو یہ تقسیم یہ رکھنی پڑے گی اور یہ بنیاد ضرور رکھنی پڑے گی کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو صلاحیتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ایک جو بھی آپ کے پاس ایک سوچ ہے اس کو برے کار لائیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، جو جس راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ جب دروازہ مسلسل ٹونک کیا جاتا ہے تو ایک دن کھل ہی جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کی کوشش کو ضائع نہیں فرماتا۔ تو ہم اپنے رب پر پہلے تو بھروسہ کریں کہ ہمیں ہمارا رب ہمارے لیے راستے بھی بنائے گا، کامیابی بھی عطا فرمائے گا۔ اب چلتے ہیں اس موضوع کی مزید وہ گہرائی کی طرف کہ یہ موضوع اپنے اندر کس قدر گہرا بھی ہے اور کس قدر مفید بھی ہے کہ انسان اپنے اندر پور اعتمادی پیدا کرے، اپنے اندر ایک اس کو ایک کیا کہتے ہیں کانفیڈینس ہو کہ میں انشاءاللہ اس کو کر لوں گا۔ کہ ڈر یہ انسان کو گرا دیتا ہے، بعض ڈرتے ڈرتے بندہ چلے گا گر جاؤں گا، گر جاؤں تو گر ہی جاتا ہے۔ اور ایک وہ شعر ہے نا کہ گرتے ہیں میدان، وہ اب شعر پورا پورا تو صحیح یاد نہیں ہے لیکن ایک شعر ہے کہ گرتے ہیں میدان میں شہ سوار ہی، طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ یہ ایک شعر ہے، ابھارنے کے لیے ایک شعر ہے، موٹیویٹ کرتا ہے۔ اور جب غزوات کا وقت ہوتا، جہاد کا وقت ہوتا تو بھی ایک ابھارا جاتا تھا، موٹیویٹ کیا جاتا تھا، بڑا اعتماد بحال کیا جاتا تھا اور بڑا جوش خون میں پیدا کیا جاتا تھا تاکہ ایک بھرپور انداز میں کام ہو سکے۔ تو آپ کر لیں گے، یو کین ڈو اٹ، تو یوں کر کے حوصلہ افزائی کر ایک ہمت بڑھائی جاتی ہے، اعتماد بڑھایا جاتا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے، ان کو نصیحتیں بھی فرماتے تھے اور انہیں آگے بھی بڑھاتے تھے، ان کے اعتماد کو بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑھایا کرتے تھے۔ تو اللہ ہم سب کو دین کے بنیادی جو اصول ہیں، طریقہ کار ہیں، اس کو سمجھتے ہوئے رہتے ہوئے یہ خود اعتمادی اور یہ پور اعتماد مزاج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے گی، کہیں یہ خود بینی میں، یہ تکبر میں اور یہ خود پسندی میں ہمیں گرفتار نہ کر دے، خود رائی کی طرف ہمیں یہ نہ ڈال دے۔ تھوڑا سا اس میں یہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ باتیں ہمیں مطلب کہ نہ، اللہ چاہے گا تبھی ہوگا، ورنہ بڑے بڑے فیصلے دھڑے کے دھڑے رہ جاتے ہیں۔ اب کرونا دیکھ لو نا، بڑوں بڑوں کے اعتماد کو اس نے پاش پاش کر کے رکھ دیا ہوگا کہ نہیں ہم کو کر لیں گے، ہم کر لیں گے، کر لیں گے، کچھ نہیں کر سکے، نظر ہی نہیں آ رہا کسی کو تو کریں گے کیا۔ اللہ والب جو جس کو نظر آنا کہتا ہے وہ تو نہیں، وہ قرب بینوں سے دیکھ لیں گے۔ اب اللہ چاہے تو ایسی مخلوق بھی بھیج دے جو اس سے بھی نظر نہ آئے، تو کیا کر لیں گے۔ تو یہ اللہ تعالی کی مدد، اس کی رحمت اور اس کے کرم پر ایک مسلمان نظر رکھ کر پھر آگے بڑھتا ہے، یہ اس تمام تر موضوع کی بنیاد کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیے گا۔ جیسے مدنی مذاکرے میں بات ہو رہی تھی تو میں نے ایک بات بتائی تھی کہ شاید ڈاکٹر زیرک اسی طرف آئی تھنک کے گئے ہوں گے، کہ ایک شخص تھا کہ وہ جب بھی کوئی اہم کام کرنے کے لیے بڑھتا تو اس کے کان میں ایک آواز ماضی کی آتی رہتی، تو کسی کام کا نہیں ہے، ناکارا ہے، بیکار ہے، فیل ہو جاتا ہے، گدا ہے، نالائق ہے، اس طرح کی بات آتی۔ تو وہ جب بھی آگے بڑھتا تو وہ باتیں اس کو روک لیتی تھی کہ یار میں فیل ہو جاؤں گا، میں رہ جاؤں گا، میں ناکام ہو جاؤں گا۔ تو یہ چیزیں انسان کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں۔ تو اگر شروع سے ہی والدین اگر اپنی اولاد کو ان کے اندر خود اعتمادی پیدا کریں، ان کے اندر کانفیڈنس پیدا کریں، جیسے مثال کے طور پر ہم کرتے بھی ہیں نارملی، جیسے ہمارا بچہ چلتا ہے تو چل نہیں پا رہا ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں، یہ ہمارے ایک روٹین کی میں بات کر رہا ہوں، گھر گھر کے پریکٹس کی بات کر رہا ہوں، کہ جیسے ہی بچہ کو آپ کھڑا کرتے ہیں اور آپ تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ بیٹا آ جاؤ، اب وہ چل نہیں رہا ہوتا لیکن آپ اس کو چلا رہے تھے آ جاؤ، وہ تھوڑا چلتا ہے گرتا ہے اسے پکڑ لیتے ہیں، اس کو گرنے نہیں دیتے کہ گرے گا لگ جائے گا تو پھر یہ اس کا اعتماد ٹوٹ سکتا ہے۔ آپ اس کی ہمت ہی بڑھا رہے ہیں کہ بیٹا چل جاؤ، تھوڑا تو اوپر رکھتے ہیں آ جاؤ، تو یوں آپ نے اس کی ہمت بڑھائی ہے، آپ نے اس کو چلنا سکھایا، تھوڑا گرتا ہے تو بھی وہ سہلا سہلا کر پھر آپ اس کو تھوڑا چلانا شروع کر دیتے ہیں، انگلی پکڑ کر تھوڑا چلانا شروع کر دیتے ہیں، اٹھا کر دن رات نہیں چل رہے ہوتے چلاتے ہیں، چلا 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 پھر اس کا ہاتھ چھوڑتے ہیں۔ تو یوں کر کر آپ خود اپنی اولاد میں اس کے لیے چلنے کے راستے کھولتے، حالانکہ وہ آپ نہ بھی کرتے تو ایک وقت تو خود ہی چل لیتا، لیکن آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ نہیں میں اپنے بچے کو خود چلاؤں گا، اس کو چلتا ہوا دیکھوں گا۔ لیکن جب اپنی زندگی کے اہم فیصلوں کی طرف آتا ہے تو آپ اس کو شاید چلنے میں رکاوٹ پیدا، وہاں آپ کی اپنی بات چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، یا خدا نہ خواستہ جیسے بچپن میں گرا تھا تو آپ نے اس کو اٹھا لیا تھا، اس کو جھاڑا نہیں تھا، گر جاتے ہو بار بار نہیں، اور جب زندگی کے کسی امتحان میں، زندگی کے معاملے میں وہ گر جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے، تو اس کو ایسا ہم ڈیگریڈ کر دیتے ہیں کہ پھر وہ اٹھنے کا نام نہیں لیتا۔ تو اس طرح کی ڈسکشنز ہوئی تھی کہ والدین پر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے بچوں میں اعتماد پیدا کرنے کی، استاد نے بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے، استاد پر ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے شاگردوں میں اعتماد پیدا کرنے کی، کہ اگر کوئی کمزور ہوتا ہے تو اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کے اعتماد کو اس کے اندر خوف نکالتے ہیں۔ ہم جس ٹاپک کو اب لے کر چل رہے ہیں، اندر سے اس کو خوف نکال دینا ہے کہ نہیں جب گاڑی راستے میں ہوگی تو ٹکر بھی ہوگی، لگ بھی جائے گی، ٹھیک ہے دوبارہ چلے گی۔ تو یہ ہماری مجموعی طور پر ڈسکشنز تھیں اور انشاءاللہ اس کو ہم آگے لے کر بڑھیں گے۔ آپ موضوع کو بھی سمجھ گئے ہوں گے، مسائل بھی شاید سمجھ گئے ہوں گے، اپنی عادتوں کو بھی شاید آپ نے جانچ لیا ہوگا، پہچان لیا ہوگا۔ تو نسلوں میں اعتماد بحال کرنے کا آج ہمارا یہ سلسلہ ہے تاکہ وہ ترقی کے زینے چڑھ سکے، ترقی کی منزلیں طے کر سکیں۔ ان کے سامنے ان لوگوں کے واقعات بیان کرنے ہیں جنہوں نے ترقیاں کی ہیں، ہمتیں کی ہیں، حوصلے پیدا کیے ہیں، جو گرے ہیں گر کر پھر اٹھے ہیں اور آگے بڑھے ہیں۔ ڈاکٹر زیرک کیا کہتے ہیں آپ؟
سب سے پہلے تو جزاک اللہ خیر، میرے مشورے پر آپ نے جو ہے وہ سلسلہ کیا، اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ تو کشتی جیسے بیچ سمندر میں ہوتی ہے، تو پرانے زمانوں میں تو کشتی کے وہ دو چپو ہوتے تھے تو اس کو چلاتے تھے، آج کل تو موٹرائز کشتیاں ہیں کہ انجن کے ذریعے وہ فین گھومتا ہے۔ اگر خود اعتمادی देखा जाए तो ये उस चप्पू की या उस मोटर की हैसियत रखती है। बगैर चप्पू या मोटर के कश्ती जहाँ है वहीं खड़ी रहेगी या वो लहरों की मौज पर होगी, जिधर उसको लहरें लेकर चली जाएगी वो उधर चली जाएगी। लेकिन अगर मंजिल एक तयन करके उसकी तरफ जाना है तो उसके लिए वो मोटराइज या दूसरे चक्कू की हाजत होती है। इसी तरह इंसान भी अपनी जिंदगी में जो है कि जो कॉन्फिडेंस खुद एतमाद लोग होते हैं वो अपनी मंजिल का तयन करते हैं, तो जब जो है वो हालात की मौजें उनके सख्त खिलाफ होती हैं तो वो अपने इस एतमाद को मजीद पुख्ता करते हैं और अपनी मंजिल की तरफ जो है वो लगे रहते हैं। तो यही खुद एतमादी की मिसाल है कि जिस तरह कश्ती बगैर चप्पू के या बगैर मोटर के अपनी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचती, इसी तरह इंसान भी बगैर एतमाद के जो है वो अपने मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच पाता।
आला हज़रत का शेर याद आ रहा है, साथी साथी के पुकारो साथी हो तो जवाब आए, फिर झुंझलाकर सर दे पटको चल रहे मौला वाली है। तो अल्लाह की मदद पर नजर रखकर बंदा आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो इंशाअल्लाह ताला वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता ही चला जाएगा। चप्पू की मिसाल दी आप, जो किश्ती चलाने वाला जो चप्पू चलाता है, आज भी चप्पू वाली किश्तियां आपको शायद नजर आएंगी, बल्कि शायद जो रोइंग करते हैं ये खेल है वो आई थिंक वो आज भी शायद चप्पू से ही चलते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे जनरल मिसाल दूंगा, अगर चप्पू भी टूट जाए ना तो बाएतमाद आदमी अपने दोनों हाथों को भी चप्पू बनाकर चलते हैं। स्विमिंग कैसे करते हैं? स्विमिंग हाथों से होती है, स्विमिंग चप्पू से तो नहीं ना होती। दो हाथों से ही पानी को पीछे धकेल कर अब आगे बढ़ते हैं, पानी को पीछे धकेलते आगे बढ़ते हैं, पानी को पीछे धकेलते अब आगे बढ़ते हैं, है ना। हाथ भी मारते हैं, पांव भी मारते हैं। बंदा डूब भी रहा होता है ना, और जब ये जहन बनाते मैं डूब जाऊंगा तो डूब जाता है। और अगर ये बिल्कुल अपने मतलब अपने हवास को बाकी रखते हुए, अपने हवास को कायम रखते हुए, मैं बार बार कहता रहूंगा होगा तब जब अल्लाह चाहेगा, उसकी मदद होगी तभी होगा। लेकिन जब अपने हवास को बाकी रखते हुए नहीं मैं हाथ पैर मारूंगा, कोई कना कोई तख्ता तो कोई तिंका तो कोई चीज हाथ लग जाती है और वो आखिरकार किनारे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ ही जाता है। तो अपने आप को डूबने से बचाना है। वालिदैन को चाहिए, मैं चाहूंगा डॉक्टर जीरक इस पर भी हमें मशवरा दें कि वालिदैन कहाँ कहाँ अपनी औलाद का कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। डॉक्टर जीरक इस पर कुछ मशवरा दें।
देखें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है कॉन्फिडेंस के हवाले से। अगर नफ्सियात के एतबार से देखा जाए तो इसमें एक तो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, जैसे हमारे वालिदैन होते हैं अक्सर बच्चे जो है वो उन्हीं की तबीयत पर चलते हैं। फिर हमारे घर में जो हमारे केयर गिवर जिनको हम नाम देते हैं वालिदैन हो या दीगर फैमिली के अफराद, ये सब मिलकर जो है वो बच्चे के अंदर एतमाद की फिजा कायम करते हैं। देखिए जिंदगी जो है ये तजुर्बात का मजमुआ होती है और जहां बच्चे बिलखसूस ज्यादा सीख सकते हैं जब उनकी गलती को बड़े जो है वो सही मानों में लेंगे। गलती करने से बंदा ज्यादा सीखता है और बच्चे को वालिदैन ज्यादा समझा भी सकते हैं कि जब बच्चा गलती करे। अब जाहिर है कि उनकी उम्र के हिसाब से होगा, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि बचपन से ही अगर वालिदैन क्रिटिसाइज करे, कोई चीज हाथ से गिरी तो उसमें जो है वो आवाजें कसना या उन्हें बुरा भला कहना या गुस्सा करना, इससे बच्चे का एतमाद जो है वो खत्म हो जाता है। और इसी तरह बच्चे के अंदर फिर वो जो होती है काम करने की हिस वो खत्म हो जाती है, क्योंकि ये एक नफ्सियाती असर होता है कि हम कोई भी जब एक काम करते हैं, एक मोटा उसूल है नफ्सियात का कि जब भी हम कोई काम करते हैं अगर उसकी आउटकम हमारे लिए अच्छी होगी या हमें किसी तरह का कोई रिवॉर्ड मिलेगा तो हम क्या है वो काम बार बार करेंगे। हम इंसान यानी कि मुसलमान भी नेकियां करते हैं तो उसमें भी एक तरगीब है हमारे लिए कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में तरगीब हमें दिलाई कि अगर आप नेक अमाल करोगे तो अल्लाह ताला की रिजा हासिल होगी। ये हमारे लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर है कि अगर हम ये इसी वजह से नेकियां मजीद करते रहते हैं तो बच्चा जब भी कोई वो काम करेगा, क्योंकि बच्चे के सामने जिंदगी जो है ये वो एक्सप्लोर करके ही सीखते हैं। जब बच्चा कमोबेश 6 माह का होता है, उठ के बैठना शुरू करता है, क्रोल करना शुरू करता है, तो अब ये अपने इर्द गिर्द के माहौल को एक्सप्लोर करेगा। वो अगर सीढ़ियों की तरफ जाएगा
तो गिरेगा तो उसे पता चलेगा कि यार ये जो है ना ये प्लेजेंट चीज नहीं है सीढ़ियों पर जाना, वो किसी गर्म चीज को हाथ लगाएगा उसे गर्मी लगेगी तो उसे तकलीफ होगी तो वो उस चीज की तरफ नहीं जाएगा। इसी तरह जब वो कुछ ऐसे काम करेगा जो अच्छे होंगे और वालिदैन उसका मस्बत जो है वो रवैया अपनाएंगे, उसको रिवॉर्ड करेंगे, अब वो बच्चा वो काम ज्यादा करेगा। तो बच्चे जो है वो जाहिर है कि वो गलती करेंगे, उन्हें क्योंकि तजर्बा नहीं होता, वो काम गलत करेंगे, कभी किसी चीज पर चढ़ेंगे या कोई चीज फेंकेंगे। अब वालिदैन अगर उनको अच्छे तरीके से जो है वो समझाएं तो ये बच्चा इसके अंदर कॉन्फिडेंस आ सकता है और वो बच्चा वही काम दोबारा सही तरीके से करने में कामयाब हो जाएगा और यही जो है वो उसके जहन में फिर बैठ जाता है कि हाँ मैंने ये गलती की थी लेकिन मैंने इससे सीखा, मैंने सही किया, अब मैं आगे भी चलकर जो है वो कोई काम करूंगा, अगर गलती हो जाएगी तो उसको मैं सीख कर दोबारा से सही कर लूंगा। तो इससे बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन जो वालिदैन बच्चों को डांट देते हैं या उनको जो है वो कोसते हैं, अब बच्चा डरेगा कोई भी काम करने से, उसके अंदर खौफ बैठ जाएगा। अब ये सारी जिंदगी जो है ना ये बुनियादी तौर पर एक दफा खौफ बैठ गया और जो है वो सारी जिंदगी खौफ रहेगा। और ये खौफ जो है ना ये कोई इतना लंबा टाइम नहीं लगता इसको डेवलप होने में। अगर एक बच्चे ने गलती की 5-6 मरतबा वालिदैन ने उस गलती पर डांट दिया मुख्तलिफ मौकों पर, तो बस समझे कि ये काफी है खौफ डेवलप करने के लिए। तो यूं जो है वालिदैन की तरबियत बहुत ज्यादा जरूरी है इस मामले में।
आपको इस तरह के पेशेंट से कभी वास्ता पड़ा है जो आपको ऐसा लगा हो कि यार ये मतलब के अपने ये कुछ कर सकता था लेकिन इसका कॉन्फिडेंस लूज कर दिया गया जिसकी वजह से कुछ नहीं कर सकता, या उसको कोई से साइड इफेक्ट्स कभी आपके मेडिकल लाइन में कभी आपने इसको देखा है कि इस तरह की चीजें आई हैं? हम फर्जी गुफ्तगू तो नहीं कर रहे, वाकई कोई इसकी मिसालें हैं?
जी बिल्कुल, जब क्लिनिकल प्रैक्टिस में बिलखसूस डिप्रेशन के जो मरीज होते हैं, कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, आपने जो एक गुफ्तगू की ना कि बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना ये भी एक प्रॉब्लम है और कॉन्फिडेंस का ना होना ये भी एक प्रॉब्लम है। हमारी साइकोलॉजी में भी इसको बोलते हैं कि इत्तेदाल में चलना है, और हमारी साइकोलॉजी में भी बाज दफा ये होता है कि जो बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो ना इनको थोड़ा फेलियर भी दिखाएं, इनको फेल होना भी दिखाएं ताकि इनकी वो जो थोड़ा सा जो इनके अंदर वो जो मैं वाली बात है ये थोड़ी नीचे आए ताकि ये एक लेवल में रहे। और हमारी साइकाइट्री में नफ्सियात में ये चीज है कि जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ये लोग नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी ट्रेट की तरफ चले जाते हैं जिसको हम यानी खुद पसंदी का नाम दे दें, और ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, इनकी अपनी और दूसरों की जिंदगी जो है वो मसाइल का शिकार बन जाती है। और जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता वो फिर डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, और अक्सर जो डिप्रेशन के मरीज हैं या इसमें आप साइकोसिस ले लें जिसको पागलपन बोलते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, इनमें बहुत बड़ा किरदार नेगेटिव थिंकिंग का होता है, और नेगेटिव थिंकिंग की बुनियाद लो सेल्फ एस्टीम और लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है। यहाँ पे मैं एक बात और भी ऐड करना चाहूंगा माजरत के साथ, के जो आपने कहा ना कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की जात पर तवक्कुल, ये भी हमारी नफ्सियात में मौजूद है कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस या इंग्लिश में हम उर्दू में तो खुद एतमादी एक ही है लेकिन इंग्लिश में या साइकोलॉजी में हम इसको दो पहलू के तौर पर लेते हैं, एक आपकी जात के हवाले से आपके अंदर एतमाद, आपके बिलीफ्स के हवाले से यानी बिलीफ्स आपके क्या है, रिलीजियस बिलीफ्स आ गए, अल्लाह ताला की जात पर इसमें एतकाद आ गया, ये अगर यानी कि प्रॉपर होंगे तो आपकी सेल्फ एस्टीम अच्छी होगी। और फिर दूसरा जो हम इसका खुद एतमादी का पहलू लेते हैं वो आपकी स्किल्स के एतबार से, कि आपके अंदर जो स्किल्स हैं, तो बिलीव्स और अपनी जात के हवाले से व्यू और स्किल्स के हवाले से, तो तजर्बा जो है वो स्किल्स के पहलू पे चला जाता है, और जो बिलीव्स सेट ऑफ बिलीव्स पर्सनल वैल्यूज मॉरल वैल्यूज ये भी सेल्फ एस्टीम के इसकी तरफ है जरूरी होते हैं। तो डेफिनेटली डिप्रेशन में, साइकोसिस में, पर्सनैलिटी ट्रेट में जो एतमाद का बहुत बड़ा रोल है, या टू मच हो गया तो भी प्रॉब्लम, टू लिटल हो गया तो भी प्रॉब्लम।
देखिए इसमें ये जरूर मैं अर्ज कर दूं देखने सुनने वालों को कि जब आप इसको मुताला करेंगे तो आपको लगेगा यार ये वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। दूसरों की कामयाबी या दूसरों की ही उस मकसद को लेकर आप अपने आप को जज करेंगे तो बाद अवकात बंदा फ्लॉप भी हो जाता है। एक शख्स जो पहाड़ पर चढ़ गया, बोलो मैं भी चढ़ सकता हूँ। भाई पहाड़ पर आप नहीं चढ़ सकते, आप मैदान पर दौड़ चल सकते हो, पहाड़ पर चढ़ने वाला शायद आपकी तरह मैदान में दौड़ ना सके। तो अपनी सलाहियतों को और अपनी काबिलियतों को भी जांचना बहुत जरूरी है। सबसे बुनियादी बात जो मैंने कहा, अपने रब पर भरोसा। सेकंड बात जो मैंने आपको बतानी थी वो तुरंत मुस्बत सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छा गुमान, अच्छी सोच, ये आपको तरक्की की तरफ लेके जाती है। आप माइनस सोचेंगे और हमेशा नेगेटिव सोचेंगे तो आपको ये लगेगा आप जब भी सोच चलने की कोशिश करें बोले गिर जाऊंगा, गाड़ी चलाएंगे तो लग जाएगी। जो गाड़ी चलाने की सिखाता है ना, ये भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करता है कि आप चलाओ कोई नहीं। यानी वो यहां तक समझाते हैं कि दूसरे लोग आपको मारेंगे, आपने अपनी गाड़ी बचा कर निकालनी है। तो इस तरह हमें अपनी इन चीजों को दुरुस्त करने की जरूरत होती है। कुछ कॉल्स आई हैं, कॉल्स भी लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
प्यारी प्यारी निगरानी शूरा मुएरा, ये सवाल है कि खुद एतमादी और ओवर कॉन्फिडेंस में फर्क बता दें।
जी, खुद एतमादी और ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है जी। आगे एक और कॉल दे दें।
आज के टॉपिक के हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा कि इंसान की शख्सियत में बहुत सी ऐसी सलाहियात होती हैं, लेकिन अगर उसके अंदर खुद एतमादी की कमी हो तो उसकी सलाहियात जो होती हैं उसकी शख्सियत में, उसका खास कोई फायदा नहीं होता। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि मनफी सोच बहुत ज्यादा उसके अंदर होती है, जो कि उसके वालिदैन या जो उसके इर्द गिर्द माहौल के लोग होते हैं वो उसके अंदर डालते हैं। हर बात में मनफी सोच उसको देना कि तुमने ये ऐसे किया, इसको ऐसे करना चाहिए था, कभी इसको अप्रिशिएट नहीं करते। तो इस वजह से उसके अंदर ये खुद एतमादी में कमी आ जाती है। और दूसरा, इंसान जब अपने आप को दूसरे के उस पर रख के सोचता है कि मेरे से ये नहीं होगा, तो इसमें भी वो काफी हद तक ये होगा। तो इसमें आप कुछ वालिदैन के हवाले से बताएं कि वो कैसे मस्बत सोच लाएं, ये मनफी सोच अगर औलाद में ला भी रहे हैं तो औलाद इसको कैसे ठीक करे।
देखिए, पहली कॉल तो जो थी खुद एतमादी और ओवर कॉन्फिडेंस, इस पर अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर जीरक ने भी कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस तो फिर ये इंसान को बर्बाद कर देता है। वो खुद राय की तरफ चला जाता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही है, मेरा हर फैसला सही है। वो अपनी ही जात के बारे में बहुत ज्यादा फिर ऐसा सोचना शुरू कर देता है, फिर खुदा ना खासा तकब्बुर की तरफ ना चला जाए, खुदा ना खासा फिर किसी और बुराई की तरफ ना चला जाए। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, बंदे को इस बात का डर और खौफ होना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब कि मेरा ये चीजें उल्टी पड़ जाए, गलत साबित हो जाए, मेरा तजर्बा गलत साबित हो जाए। होगा तभी दुरुस्त जब तक अल्लाह दुरुस्त नहीं फरमाएगा, अल्लाह मदद नहीं करेगा, अल्लाह की रहमत शामिल नहीं होगी तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। करे मगर रब पर भरोसा कर आगे बढ़े, हिम्मत करे रब पर भरोसा कर हिम्मत करे। तो ये चीजें ओवर कॉन्फिडेंस ये जो बंदे में जब आ जाती है ना, फिर वो बाज़ोखात फिर मार भी खाता है। देखा, ये ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, ये जो वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं ना, आता वाता नहीं है, किसी को देखा आ रहा था, इन्होंने वन व्हीलिंग शुरू कर दी, जुम गए, ये इनको ओवर कॉन्फिडेंस इनको ले गया। इस तरह बहुत सारे लोग होते हैं जो इस तरह के ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं और पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। तो तजर्बात, लोगों के तजर्बात से जो वाकई समझदार होंगे ना, खुद एतमादी के साथ अल्लाह ने को समझ दी होगी, वो लोगों के तजर्बात से भी फायदा उठाएंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और जो ये कॉल ये आई कि वालिदैन, तो वो उस पर ही हम डिस्कस कर रहे थे कि वालिदैन को चाहिए कि अपनी औलाद को हिम्मत बढ़ाएं, हौसला बढ़ाएं। मिसाल के तौर पर बेटी ने एक रोटी बनाई है, रोटी टेढ़ी मेढ़ी बना दी, रोटी गोल होती है, गोल के बजाय रोटी तिकोनी बन गई है, तब तो तिकोनी रोटी भी फंस तो नहीं जाएगी पेट में जाने के बाद? आपने तिकोनी रोटी बना दी है, कोने वाली रोटी बना दी है, कोने वाली रोटी, तो कोने वाली रोटी गले में जाके फंसती नहीं है, यकीन माने खा कर देखे नहीं फंसेगी। गोल जिस तरह अंदर चली जाती है, तरह तिकोनी भी अंदर चली जाएगी। तो बनाया तो सही ना, बेलन लेकर बेचारी ने कोशिश तो की, आटा गूंद कर उससे रोटी बना तो ली, तवे पर लगाकर सेक तो ली, अगर कच्ची भी कहीं रह गई तो पूरी तो कच्ची नहीं रह गई, कहीं ना कहीं तो पकी है। तो जिस अगर उसे 25% रोटी बना लिए तो कल 75% मस्जिद बना लेगी। तो इसकी हिम्मत बढ़ाएं, बच्चे की हिम्मत बढ़ाएं, बच्चा को अच्छा काम कर आ रहा है तो उसकी हिम्मत बढ़ाएं। आजकल पता है क्या है, आजकल यही है कि जनाब वो उसने फर्स्ट ले लिया, तूने फर्स्ट क्यों नहीं लेता, सेकंड लिया तूने सेकंड क्यों नहीं लिया, थर्ड लिया तूने थर्ड क्यों नहीं लिया, और जैसे ही बच्चा मतलब कि वो कुछ ना कुछ ऐसी नाकामी की सूरत में आता है कि वो नाकाम आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे नाकाम हो, उसने अपने तो भी पूरी कोशिश की, आपका बेटा कोशिश की कि ठीक है नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मजीद आगे बढ़ेंगे, कैरी ऑन, अल्लाह और आपको हिम्मत दे। मैंने एक जुमला आपको शायद कुछ अरसे पहले कहा था, एक बाप है ना, बाप जब बेटा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पर, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर, या लाइफ के किसी और मौजू में, जब बेटा या बेटी या जो भी औलाद जब वो परेशान होती है ना, तो उसकी वाकई नजर उसके वालिद पर होती है, और वालिद का वो एटीट्यूड उसके सामने होता है कि अगर मैं गया तो वालिद साहब डांटेंगे, झाड़ेंगे, गुस्सा करेंगे, मारेंगे, मेरा हौसला बढ़ाएंगे, मेरा हौसला गिराएंगे, मेरे वालिद साहब करेंगे क्या। यकीन माने ये बहुत जरूरी चीज बयान करने के लिए जा रहा हूं, जो वालिद सुन रहे हैं, आपकी औलाद सबसे पहले कहां देखेगी आपको, अगर उनको लगेगा ना वहां से मुझे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आपकी औलाद बाहर चली जाएगी, किसी और के साथ शेयर करेगी, फिर हम कहते हैं कि यार आपने बाहर बात क्यों की, हमसे उनको एतमाद नहीं है, हमारा अपना एतमाद बहाल करना बहुत जरूरी है। तो जब औलाद को आप देख लेना ये बेचारा टूट रहा है, परेशान हो रहा है, मेरी दरखास्त है वालिद से, स्पेशली मैं बाप से बात कर रहा हूं, जब ये बेटा टूटता हुआ नजर आए ना, टूट जाता है बेटा, बाद औकात नहीं होता उसके पास, रास्ते बंद हो जाते हैं, और हम मतलब कि इसको किसी और के डिपेंड पर डाल रहे होते हैं। औलाद किसी और के डिपेंड पर आना पसंद नहीं करती, वो अपने बाप पर डिपेंड करना चाहती है कि मेरा बाप मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। उस टाइम पर वालिद को चाहिए कि कहे बेटा आई एम विथ यू, यू आर नॉट अलोन, तुम अकेले नहीं हो, वी आर टूगेदर, हम दोनों साथ हैं, मैं बेटा हम हमारे साथ खड़ा हूं, मैं हूं बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, यूं तो दावत इस्लामी का एक बड़ा हिस्सा गुजारा है, अल्लाह का शुक्र है, तकरीबन 91 से लेकर 2020 चल रहा है, ठीक है ना, लेकिन तकरीबन 2000 में हमारी मरकजी वैसे शूरा बनी थी, ठीक है, और मैं उस शूरा में लिया गया, और शूरा बनने के बाद ज्यादा क्लोजली अमीर सुन्नत के साथ वक्त गुजारने का देखा मौका मिला, बहुत सारे मसाइल परेशानियां कई चीजें मैंने देखी हैं, मेरे अराकीन शूरा ने देखी हैं, ये भी अगर वो होते इस वक्त मेरे साथ तो मेरी बात पर वो बिल्कुल मुझसे मतलब वो मुझे वोट देते कि तुम सही कह रहे हो, कि कई जगह पर ऐसा था अमीर से कहते आप करो मैं खड़ा, आप करो मैं हूं, आप करो मैं हूं, अरे एक कैसा एतमाद हो जाता था कि यार हमारे साथ हमारे बड़े खड़े हैं, हमारे साथ हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, हमारे हमारा पीर, हमारा अमीर, हमारी कियादत हमारे साथ खड़ी है, अगर कोई गलती हो भी गई तब भी ये हमारे साथ खड़े, यानी गलतियां करके भी इस्लामी भाई आए अमीर सुन्नत के पास, आपने उनका एतमाद बढ़ाया, गिरते मैदान में शे सवारे, यानी बाद औकात कंप्लेंट्स आई है ना कंप्लेंट्स, उस पर अमीर से कहा भाई जो गाड़ी चलेगी वो तो उसको तो एक्सीडेंट तो होगा, उसको मट्टी तो लगेगी, उसके टायर तो घिसेंगे, जो काम करेगा अमीर सुन्नत में बताते थे कि जो काम करेगा वो गलती तो करेगा, तो ये चीजें कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं, ये एतमाद बढ़ाती हैं कि आप करो मैं आपके साथ हूं, ये बहुत बड़ी बात होती है यार, जब पहाड़ पे भी कोई चढ़ रहा होता है ना तो उसके साथ फिर भी रस्सी होती है, उसके साथ फिर भी हुक होती है, क्लिप्स होती है उसके पास, तो पता है उसको, उसको किसी गैप का पता होता है कि अगर पांव स्लिप हो तो ये हाथ डाल दूंगा मैं रुक जाऊंगा, कोई चीजें इसके सपोर्टिंग में होती है जो इसको मोटिवेट करती हैं, इसको इंकरेज करती हैं, इसको ऊपर चढ़ाती हैं। औलाद के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटी है ना, यकीन मानो उसके वालिद हैं, और अगर ऐसे पीर साहब मिले हुए तो पीर साहब, ऐसे बुजुर्ग मिले तो बुजुर्ग हैं, मिलते हैं ऐसे बुजुर्ग, ऐसे पीर साहब, ऐसे अल्लाह के नेक बंदे मिल होते हैं जो मतलब आपको बहुत कॉन्फिडेंस देते हैं, बल्कि यकीन माने एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस का पता है सारा होता है दुआ, ये माँ है ना, माँ बड़ी माँ बड़ा एतमाद दे देती है, माँ खुद एतमादी में इजाफा कर देती है, माँ कह देते जा बेटा मेरी दुआएं तेरे साथ है, अल्लाह तेरा भला करे जा, यू मतलब कह देते ना तो ये हिम्मत आ जाती है, पीर साहब कह देते गोस्पा का फरमान है ना मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी, ए मुरीद तुझे डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह मेरे साथ है, एक जुमला है, तो ये वर्ड होते हैं जो मतलब एतमाद दिला देते हैं, हिम्मत पैदा कर देते हैं, यानी कि जो समझो कि वो टायर पंचर में हवा भर देते हैं, तो अगर ये औलाद चाहती है अपने वालिदैन से ये चीजें। अच्छा जब स्टूडेंट क्लास के अंदर इस तरह वीक जा रहा होता है ना तो उसकी नजर उसके उस्ताद पर होती है कि मेरा उस्ताद मेरी इस कच्ची दीवार को धक्का मारकर गिरा देगा या इसे मजबूत करने की कोशिश करेगा। अल्लाह करे जो मैं अर्ज कर रहा हूं ये हम अपनी ये देखे, अगर हमने ये ना किया तो हमारी नस्लें कमजोर, हमारे बच्चे कमजोर हो जाएंगे। जिनके बच्चों को ये एतमाद की सीढ़ियां मिलती रहेंगी ना वो ऊपर चढ़ते रहेंगे, और जिनके बच्चों को एतमाद की सीढ़ियां नहीं मिलती बल्कि हम एतमाद की सीढ़ी पर भी कहते हैं पाव रखो, तो हम ये कहते हैं देखो बेटा पाव संभाल के रखना जरा लकड़ी जो कमजोर है टूट जाएगी, वैसे डरा दिया इसको। जैसे हम बचपन में कहते थे यहां से नहीं जाना, बहू आएगा वो आएगा ये आएगा वो आएगा, यू हाथ हिला हिला कर बच्चे को डरा रहे होते हैं। ना करें, उसको हिम्मत वाला ताकत वाला हौसले वाला बनाए। डॉक्टर जीरक क्या कहते हैं आप?
जी बिल्कुल आपने सही कहा, आपने वो टायर में हवा भरने का तذکرہ किया तो मुझे उसमें एक मिसाल याद आ गई। गाड़ी जब तभी चलती है कि जब पहियों में हवा मुनासिब मकदार में हो, कम होगी तो भी प्रॉब्लम, ज्यादा होगी तो टायर फटने का खदशा है। तो इसी तरह वालिदैन के हवाले से जो आपने कहा, मैं एक उसको एंडोर्स भी करता हूँ और उसमें एक बात का इजाफा करना चाहूंगा, बच्चे से जब गलती होती है तो वालिदैन एक और अपनी गलती करते हैं कि मैं इस पर गुस्सा करूंगा इसे डांटूंगा तो ये अगली दफा खराब काम नहीं करेगा। ये बिल्कुल गलत सोच है, इससे बच्चा जो है वो उसका कॉन्फिडेंस में कमी होगी, अगली दफा वो डरेगा, करते हुए डरेगा और ज्यादा गलती करेगा क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ ये नहीं है कि आप बिल्कुल डांट नहीं सकते, डांट सकते हैं लेकिन उसमें भी जो है वो एक तरीका कार होता है किस तरह डांटना है। बाज दफा बच्चा गलती करता है तो उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है, अगर एहसास हो गया अब वालिदैन उसको थप्पी दे दे। जैसे माशाल्लाह आपने अमीर अहले सुन्नत के हवाले से तज़किरा किया कि किस तरह एतमाद देते हैं, आजकल मजनू कसौटी होती है तो जब अमीर अहले सुन्नत देखते हैं अगले का चेहरा तो कहते हैं ला तख़फ़, तो वो कैसे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तो गुस्से की बजाय प्यार और मोहब्बत से समझाएंगे तो वो एक दफा समझाना जो है वो अपना काम कर जाएगा, गुस्सा करते रहेंगे तो सारी जिंदगी का वबाल जो है वो बनेगा। और ये बच्चे जब फिर बड़े होते हैं फिर आगे चलकर इनके जब शादियां होती हैं तो इनके आपस में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, वहां रिलेशनशिप में ये नहीं कोप कर पाते, जॉब के हवाले से प्रॉब्लम होती है तो फिर परेशानी किसको होगी, वालिदैन को तो होगी ना परेशानी। तो यूं क्या है कि ये जो गुस्सा करने की बच्चों के साथ मनफी आदत है हर वक्त, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कहीं कहीं डांट जरूरी भी होती है लेकिन ये है कि जब बच्चे से किसी ऐसे काम में गलती हो जाए जिसमें जो है वो उसको मजीद हौसले की जरूरत है तो हम उसे प्यार मोहब्बत और हौसले के साथ करें।
जी कॉल दे
ये खुद एतमादी एक फैक्टर बेहतरीन फैक्टर लिया आपने आज माशाल्लाह, ये स्किल्स में से यानी अपर लेवल का एक स्किल है जिसको डेवलप करना बहुत जरूरी है। अर्ज ये थी कि बहुत सारे लोग होते हैं वो करते हैं यानी खुदकशियां करते हैं, लोग वेल एजुकेटेड होते हैं, बाज़ुकात वो पढ़े लिखे भी होते हैं, अच्छे फैमिली से ताल्लुकात भी होते हैं लेकिन वो करते हैं अपने आप को मार देते हैं, ये खुदकशी करते हैं, शरीयत में तो इसकी मना भी है फिर भी वो करते हैं। तो अच्छा ये खुद एतमादी क्या उनके पीछे होती है इन इस फैक्टर के पीछे, उनके खुद को मारने के पीछे खुद एतमादी का गैप होता है या नहीं होता, ये सवाल है। ये
या खुद एतमादी तो जहन में नहीं आ रही, यहाँ तो ये वाज़े तौर पर कि इन्हें अपने रब पर ही कामिल भरोसा ना रहा कि मेरा रब मेरी मुश्किल हल कर देगा, मेरा रब मेरी मुश्किल आसान कर देगा, मेरा रब मुझे इस परेशानी से निकालेगा। इन्होंने रब पर भरोसा जैसा करना चाहिए किया नहीं और इन्होंने हराम रास्ता इख्तियार किया, खुदकुशी कर अपने आप को इन्होंने मजीद आजमाइश में डाल दिया ना। ये खुदकुशी तो हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है और कहते अब तो घबरा कर कहते हैं कि मर जाएंगे हम, मर के भी चैन ना आया तो किधर जाएंगे हम, तो मर के खुदकुशी के साथ मरने से कोई चैन कहाँ से मिलेगा। बंदा जिस आले से खुदकुशी करता है वो आला उसके लिए जहन्नम में अजाब का सबब जरिया बन जाता है, तो खुदकुशी तो नहीं करनी चाहिए। खुदकुशी करने वाले को तो ये सोचना चाहिए कि मतलब कि मेरा रब मेरी मुश्किल हल करेगा, मेरा रब मेरी मुश्किल आसान फरमाएगा। आजमाइश आई है, तकलीफ आई है, बाद वक्त अपने हाथों की तकलीफ अपने हाथों की आजमाइश होती है। ले लिए होते लंबे चौड़े कर्जे के उतार देंगे, भाई नहीं उतार सके तो क्यों कर्जा लिया था हमने, फला क्यों किया था हमने। तो अपने आप को बंदा मतलब के मलामत करे कि यार ये जो चीज हुई है ये मतलब इसमें मतलब मेरा कसूर है। कई खुदकुशियां ऐसी बेइज्जती के खौफ से खुदकुशी, खुदकुशी के पीछे खौफ ही है بس ایک خوف ہے بےعزتی کا. زیادہ تر خودکشیاں جو ہوتی ہیں نا وہ بےعزتی اور بیزاری کے ساتھ ہوتی ہیں. بندہ زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے. اب رزق اللہ دینے والا ہے, اللہ پر بھروسہ کریں نا, اللہ پر اعتماد کریں, وہ رزق دینے والا ہے. آپ کو کیا ضرورت ہے خود کو مارنے کی اور اپنے بچوں کو مارنے کی, خود بھی قتل بھی کیا بچوں کا, خودکشی بھی کی, دو دو حرام کام کر کے دنیا سے چلے گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں خودکشی جیسی نحوست سے بچائے, آفت سے بچائے. تو اپنے رب پر بھروسہ کریں, اللہ پر اعتماد کریں. رزق اللہ ہی دینے والا ہے, رزق اللہ ہی کشادہ کرنے والا ہے, اور اس کی تقسیم ہے. جس کے لیے چاہتا ہے رزق زیادہ دیتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ فرما دیتا ہے. امیر ہیں غریب ہیں, اللہ کی تقسیم ہے. پچھلے دنوں اس پر بھی پورا ایک بیان ہوا ہے کہ آخر کوئی امیر کوئی غریب ہے تو اس کی وجہ کیا ہے, اس کی حکمتیں کیا ہیں, یہ وجہ ہے. پھر اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے بعض اوقات ہم نے معاملات خراب کیے ہوتے ہیں, اپنی ہی چیزیں ادھر ادھر کی ہوئی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے بے عزتی کا خوف ہوتا ہے, جان کا خوف ہوتا ہے, تو بندہ خودکشی کرتا ہے. تو خودکشی نہیں کرنی چاہیے, اپنے رب پر بھروسہ کریں. اللہ تعالی لمحوں میں حالات بدل دیتا ہے, وہ لمحہ نہیں لگتا حالات بدل دیتا ہے. بندہ رات کو گھبرا کر سوتا ہے, صبح کو سکون کے ساتھ اپنی آنکھ کھولتا ہے. تو اپنے رب پر بھروسہ کریں, کبھی بھی خودکشی کی طرف نہ جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری مدد کرے اور ہمیں خودکشی سے بچائے. ہمیں اللہ پر پورا پورا صحیح معنوں میں اعتماد و بھروسہ ہونا چاہیے. جی کال دیں.
احمد رضا کورنگی کراچی سے. نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے, کل آپ سوشل میڈیا کے حوالے سے کچھ عرض کر رہے تھے اور آپ نے آج موضوع چینج کر دیا, کچھ رہنمائی فرما دیجیے.
سوشل میڈیا کو ہی لانا تھا, لیکن وہ آج میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ ڈاکٹر زیرا کا پیغام آ گیا تھا کہ آج خود اعتمادی پر کچھ کر لیتے, تو پھر میں نے آج خود اعتمادی کو لے لیا. کل سوشل میڈیا لے لیں گے انشاءاللہ. مقصد ہے ہمارا نسلوں کو بچانا, والدین کو اس بات کی, استادوں کو, پھر خود نوجوانوں کو یہ سمجھانا ہے کہ آپ بھی اپنے اندر اوور کانفیڈینس نہ پیدا کریں, کہ اوور کانفیڈینس ہو کر آپ اپنے والد کی بات نہیں مانتے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے پیارے بچوں, یہ ڈاکٹر زیرک بھی اس کو میرا خیال ہے شاید انڈوس کر دیں واللہ عالم. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بیٹھ کر والد صاحب سمجھا رہے ہوتے ہیں, آپ کو آپ کے گھر والے سمجھا رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ والد صاحب کو نا گھر کے بڑوں کو سمجھ نہیں پڑتی. یہ آپ کہتے ہیں ان کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے, آپ چھوڑیں مجھے خود اعتمادی پیدا کرنے دیں. وہ آپ نے راستہ ہی وہ اختیار کیا ہے جس پر آپ کے گھر والوں کو, بڑوں کو, والد کو تجربہ ہو چکا ہے کہ اس راستے پر چلنے کا نقصان ہی ہوا ہے, اس راستے پر چلنے سے چوٹی لگی ہے. تو وہ اب آپ کو بچاتے ہیں, روکتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں نہیں, آپ پہنچو, بھروسہ کریں, مجھ پر اعتماد کریں, میرے اندر کانفیڈینس کیسے پیدا ہوگا. تو بھائی, تو کنویں میں پھینک کر کانفیڈینس تھوڑی پیدا کروایا جائے گا, بس سوئمنگ پول میں دھکا مار دیا جائے گا کہ چلو تیرتا ہوا جائے گا, نہیں مطلب نہیں ہاتھ پھر مارتا گا تو پکڑ کے نکال لیں گے. کنویں میں کون دھکا مارتا ہے کانفیڈینس پیدا کرنے کے لیے, کہ کنویں میں چلا گیا سیدھا کا سیدھا, اندر ہی کھائی میں ڈال دیا کانفیڈینس پیدا کرنے کے لیے. جب باپ کو پتا ہے تو اپنے والد پر بھی تو بھروسہ کرو نا, اس کو بھی تو اپنے پر ایک اعتماد ہے یا نہیں ہے؟ کیا والد کی کوئی خود اعتمادی نہیں ہوتی, اس کا کوئی کانفیڈینس نہیں ہوتا, اس کو یہ نہیں ہوتا کہ وہ بچپن میں ہی آپ کا ہاتھ پکڑ کے چلتا تھا, مطلب آپ کو چلاتے تھے گر نہ جائیں, تو آج کیا وہ آپ کو گرنے دیں گے؟ تو آپ بھروسہ کرنا بھی تو سیکھیں اپنے والدین کے ساتھ. یہ سب یہ بہت بڑا پرابلم ہے جو میں ڈسکس کر رہا ہوں, کہ بڑے کہتے ہیں کہ ہماری سنتا نہیں, چھوٹے کہتے ہیں کہ ہماری مانتے نہیں. دونوں کو تھوڑا تھوڑا آگے آنا, اس کی سنیں بھی آپ, اس کی مانیں بھی, اور ایک دوسرے پر بھروسہ کریں. میں تمام بچوں سے کہتا ہوں, آپ کے والد سے بڑھ کر تو آپ کا کوئی خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا نا. سب سے زیادہ آپ کو اگر کوئی تکلیف پہنچی تو اس کا سب سے زیادہ احساس کس کو ہوگا؟ والدین کو ہوگا. تو والدین بعض اوقات سمجھا رہے ہوتے ہیں, شادی کے طور پر سمجھا رہے ہوتے ہیں, بھائی یہاں شادی نہیں کرو, یہاں یہ نہیں کرو, یہاں انویسٹمنٹ نہیں کرو. مجھے پتا ہے والدین نے منع کیا, اولاد نہیں مانی, اولاد نے نقصان اٹھایا. کہاں گیا بھائی تمہارا اعتماد, کہاں گیا آپ کا کانفیڈینس؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر اولاد نہ مان کر بھی خدا نہ خاصا کوئی لاس کر بیٹھتی ہے, کوئی بڑا نقصان کر بیٹھتی ہے, تو اب والدین کو چاہیے کہ اس کو تانا دینے کے بجائے, طنز کرنے کے بجائے, ہماری مانی نہیں, یا اس کو یہ پتا ہوگا کہ مجھے تانا طنز اور ڈانٹ ملے گی تو وہ آپ کی طرف آئے گا بھی نہیں, پھر خدا نہ خاصا الٹا سیدھا راستہ اختیار کر لے گا. تو یہ تھوڑا سا بیلنس کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. چھوٹوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بڑوں پر بھروسہ کریں, اعتماد کریں, اور بڑوں کو چاہیے کہ اپنے چھوٹوں میں خود اعتمادی پیدا کرنے کی कोशिश करें। डॉक्टर जीरा क्या कहते हैं आप इस टॉपिक पर?
जी बिल्कुल आपने सही फरमाया, अगर हम में से मदनी चैनल के नाजरीन भी अगर अपनी जिंदगी का जायजा ले तो बहुत सारी वालिदैन की बातें बचपन की हमें उस वक्त समझ नहीं आती थी, आज जो है वो हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी हैं, और हम में से कई जो है वो काफी अफसोस करते होंगे कि भाई अफसोस करते होंगे कि काश मैंने अपने वालिदैन की ये बात मान ली होती। सोचने की जरूरत है, अगर कोई सोच ले इस पर आज भी तो वो अपने बच्चों के हवाले से भी कामयाब हो सकता है। तो यकीनन बड़ों की बात मानने से ये भी उसी में, जैसे मैंने पहले आज की ना कि सेल्फ एस्टीम में हमारे बिलीफ्स भी होते हैं, तो हमारा ये एक बिलीफ होना चाहिए कि मेरे बड़ों ने जो बात कह दी है ना वो इंशाल्लाह उसमें हिकमत है। देखिए जिंदगी कामयाब गुजारने के लिए ना तो आपको यानी कि तालीम की जरूरत है ना कोई बड़ी डिग्री की जरूरत है, ठीक है मैं उनका इनकार नहीं करता, वो एक अपनी जगह है, लेकिन लाइफ इटसेल्फ जो है ना, इतने अनपढ़ लोग हैं, खुद मैं अपनी फैमिली में देखूं कि वो दीगर पढ़े लिखों से ज्यादा कामयाबी हासिल की उन्होंने कई मालूम है। तो ये जो यानी कि हम पढ़े लिखे हैं, हमारे वालिदैन पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें क्या इतना पता है क्या नहीं पता, देखिए जिंदगी एक तजर्बा है और तजर्बात से हासिल शुदा बात जो है वो किताबों में भी मिल सकती है, लेकिन जो है जो वालिदैन के जो अपने आपने तजर्बात आपको पेश करेगा सामने बैठकर उसका एक अफादियत है, अहमियत है। और इस इंशाअल्लाह जैसे आपने भी तज़किरा किया कि जो रिवायत अब मेरे जहन से निकल गई, लेकिन बड़ों के साथ जो है आपको बरकत मिलती है।
अल बरकत तो बरकत तुम्हारे अकाबरीन के साथ है, उलमा बुजुर्गाने दीन के साथ अगर आप वाबस्ता रहते हैं, अल बरकत तो मा अकाबरी को बरकत तुम्हारे अकाबरीन तुम्हारे बड़ों के साथ है। जी कॉल्स दें।
मैं अभी निगरानी शुरू जो माशाल्लाह वैसे तो काफी अच्छी चीज निगरानी शुरू और डॉक्टर साहब अर्ज कर रहे हैं। अच्छा इसमें सिर्फ मुझे एक चीज ये इशू था कि नॉर्मली जो बच्चों को हम समझा रहे, जो बच्चे भी प्रोग्राम मेरे बड़े शौक से देख रहे होते, नॉर्मली हम बच्चों को थोड़ा बहुत जो समझा रहे होते हैं ना, इसको भी शायद वो यही समझ रहे हैं कि यानी कि डांट डपट होती है या उसी मतलब हम लोग बहुत ज्यादा उनके साथ नाइंसाफी कर रहे होते हैं, तो वो उन लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। इसमें नॉर्मली जो हम बच्चों को जो समझा रहे होते हैं ना, बच्चे शायद फील कर रहे हैं कि शायद वो जो हल्का का डांट डपट करना होता है या किस चीज पे ये ना करो वो ना करो, उस चीज के ऊपर भी वो समझ रहे हैं इसी तरीके से होता है। इस चीज के ऊपर से उनको मुझे पॉइंट आउट करवाना था कि काइंडली अगर इस चीज को भी थोड़ा सा अलग से सेपरेटली इसको हाईलाइट कर दें।
देखिए थोड़ा सा यहाँ मैं आपको अर्ज करूंगा कि जब आप तरबियत करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, डायरेक्शन देना चाहते हैं, तो साउंड में अपनी आवाज में और अपने मिजाज में तो आपको नीचे आना पड़ेगा। बच्चे को ये फील हो ही ना कि मुझे मतलब कि प्रेशराइज किया जा रहा है, ये मैं आपको हिकमत की बात बयान कर रहा हूं कि मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है, उसको इतना थोड़ा सा माहौल देंगे वो आपसे बात कर सके, वो क्लियरली बात कर सके। मैं आपको बताऊं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जात इतनी आला जात पाक थी, आपकी बारगाह में बात करने की गुंजाइश हुआ करती थी। यानी जब कोई आता तो एक नबूवत का रोब होता था ना, एक है वो बड़ा मतलब क्या था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी वो चीजें रिलीज हो जाती थी और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबियात बात करती थी, अपने अहम मौजू डिस्कस करती थी, सहाबा कराम एक से एक मौजू डिस्कस किया करते थे, बड़ी शफकत बड़ी मोहब्बत बड़ी नरमी बड़ा हिल बड़ी गुंजाइश हुआ करती थी सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। तो मेरी बड़ों से ये दरखास्त है, पहले तो छोटों को मैं कहूंगा कि अपने बड़ों को ऑन करें, जैसे अभी डॉक्टर जीरक ने कहा ना, इनकी जिंदगी इनके तजर्बात के साथ चली हुई है, कई चीजें ये अपनी जिंदगी में कर चुके हैं, फ्लॉप हो चुकी हैं, मैं नहीं कहता वो आज भी फ्लॉप हो जाएंगे, लेकिन बात चीजें ऐसी हैं जो मतलब जिनका रिजल्ट फ्लॉप ही होता है और हमें दोस्त कह देते हैं कुछ, हम इधर उधर से बातें सुन लेते हैं, बादों का टीवी पर ऐसा कोई प्रोग्राम देख लेते हैं, कहते यार हो जाएगा, वो स्क्रिप्टेड चीज है, वो लिखी हुई है कैसा हो जाएगा, जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिंदगी का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो सबसे पहले तो अपने बड़ों की बात को कभी भी ये ना कहें कि यार हमें बड़ों को क्या समझ पड़ेगी, तो बड़ों को तब भी समझ पड़ जाती थी बेटा जब आप बोलना नहीं आता था आपको, उस वक्त भी आपके अब्बू आपकी बात समझ जाते थे, आपकी अम्मी आपकी बात समझ जाती थी कि इसको खाना है कि इसको तकलीफ है, जब आपको बोलना नहीं आता था ना तब भी ये समझते थे, आज तो आप बोल लेते क्यों नहीं समझेंगे वो। तो ये तो आप कम से कम जरूर अपने वालिदैन के ऊपर एतमाद करें, कॉन्फिडेंस रखें। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों की बात बड़े ही एक लाइटर मोड में सुने ना, मुस्कुराते हुए सुने, थोड़ा सा तफन्नुन के साथ सुने, खुश तबई के साथ सुने। उसको ये फील ना होने दें कि मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है। कोई मुशावरत वाला निजाम लाएं, मशवरे वाला अंदाज लाएं, इंशाल्लाह वो मतलब उसको मजा आएगा आपसे बात करते हुए। और आपको लगता है कि तजर्बा करने में हरज नहीं है, आपको ऐसा तो थोड़ा बहुत तजर्बा कर भी लेने दें। खुदा ना खास्ता कोई गलती हो गई तो फिर आप संभाल भी लेना, हो सकेगा गलती नहीं होने देंगे। ये भी तो हो सकता है कि रस्सी कमर में बांध कर पानी में धक्का दे दो कि बेटा रस्सी मेरे हाथ में जा, तैरने की कोशिश कर, खुदा ना खासा डूब रहा होगा तो मैं तेरी रस्सी खींच लूंगा। यार बाप बाप होता है। तो यू एक लाइटर मोड में, खूबसूरत मोड में, एक मतलब के अच्छे अंदाज से, सॉफ्ट वाले अंदाज से अगर अपने बच्चों को लेकर आप बैठेंगे। और बातों का जैसे मैंने कल परसों भी कहा था कि सबके सामने ना लेकर बैठे, अलग से टाइम दे। अब आप बोले मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं मेरा मुसलसल प्रोग्राम यही है कि वालिदैन के पास टाइम होना चाहिए बच्चों के लिए। आप टाइम दें, बच्चा टाइम मांगेगा आप टाइम दें, उनके साथ बैठे। बेटी बात करना चाहती है, बेटा बात करना चाहता है, कोई भी बात करना चाहता है, प्लीज टाइम दें। जब सख्ती जहां करनी है ना, वो एक टॉपिक ही अलग है, जहां वालिदैन को अपनी औलाद पर सख्ती करनी चाहिए। और सख्ती बाद जगहों पर सख्ती शरीयत उस सख्ती को पसंद करती है, वो सख्ती के भी एक इल्म है जिसको सीखना चाहिए कि कहां मुझे सख्ती रखनी है और कहां मुझे सख्ती नहीं रखनी। जी
निगरानी शुरू का माशाल्लाह सिलसिला है खुद एतमादी। इन कोरोना के दिनों में खुद एतमादी कैसे पैदा की जाए?
अल्लाह बचाएगा, इतने लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जिनको कोरोना हुआ ही नहीं है। और स्पेशली तो गांव देहातों में उनको तो वो तो कोरोना को औकात ही नहीं, उन्होंने कोरोना को लिफ्ट ही नहीं कराई है। कोरोना है क्या उनको? तो उनको जाकर कोरोना बोलो, वायरस बोलो, तो उनको ये भी नहीं समझ रहे क्या कोरोना क्या वायरस, वो जी रहे। तो एतमाद अल्लाह पर भरोसा कि बीमार वही होगा जिसको अल्लाह ताला बीमार करेगा, और जिसको नहीं आनी बीमारी उसको नहीं आनी बीमारी, खत्म हो गए बात। और आप देखिए कि इस कोरोना में भी जिनको दुनिया से जाना था वो तो चले गए, मगर जिनका अल्लाह ने इसमें भी रिस्क अता किया है, अल्लाह ने इसमें भी बंदोबस्त फरमा दिया, अल्लाह ने इसमें भी बड़े वसाइल पैदा फरमा दिए, बहुत कुछ हो चुका है। तो कोरोना भी क्या बोलेगा, इंशाल्लाह जब ये चला जाएगा जिंदगी मामूल के मुताबिक आएगी, तो ये कि अल्लाह ताला पहले से बेहतर फरमा देगा उसको, वो करीम है, वो करीम है, वो चाहे तो पहले से बेहतर फरमा दे, चाहे तो पहले से ही ऐसा मामला बेहतर हो जाएगा, हमारे अकेले काम ना करेगा। यार हम तो सोते थे क्या हो जाएगा, दुनिया कह रही है मईशत कैसा हो जाएगा, मईशत कैसा, इकोनॉमिक्स कैसा हो जाएगा, क्या पता कि जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी ना हो और अल्लाह ताला ने कुछ और ही फैसला फरमाया हुआ हो। होना तो वही है ना जो मेरे रब ने चाहना है, सिंपल सी बात है। जी कॉल दे।
सवाल ये पूछना था, ये बच्चे जो वेस्ट में होते हैं कनाडा अमेरिका या इंग्लैंड में, अभी उनको घर में किस लैंग्वेज में तालीम दी जाए? घर में उनके साथ इंग्लिश में बात की जाए या उर्दू में बात की जाए, या उर्दू उनको लेटर स्टेज में जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं तो तब सिखाई जाए? क्योंकि एक मैं जगह कहीं पढ़ रहा था कि कहते हैं कि आपको क्योंकि बच्चों की स्कूलिंग के लिए उधर तो ऑप्शन ही इंग्लिश है, तो आप अगर किसी और की जबान में लर्न तो कर सकते हैं लेकिन आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव नहीं हो सकते, तो क्या शुरू से ही बच्चों को फिर इंग्लिश सिखाई जाए क्योंकि स्टडी की ऑप्शन सिर्फ इंग्लिश है और उर्दू बाद में सिखाई जाए, या घर में उर्दू ही सिखाई जाए और स्कूल में वो इंग्लिश सीखे? इस पर रोशनी डालिएगा, बहुत शुक्रिया जी।
देखिए इंग्लिश तो ये बाहर सीखेगा, स्कूल में भी सीखेगा, वहां के माहौल में भी सीखेगा, लेकिन हमारी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसकी उर्दू बाकी रखने की कोशिश की जाए, क्योंकि दीन की बहुत बड़ी बड़ी अहम किताबें हैं ना वो उर्दू में है। अच्छा वालिदैन जब उसको समझाने के लिए बैठेंगे तो वालिदैन को इंग्लिश नहीं आती, वो उनको उर्दू में ही समझा सकते हैं। तो उर्दू ना आने की वजह से खुद उस बच्चे के अंदर बहुत बड़ी कमजोरी या कमी रह सकती है। तो मेरी तो दरख्वास्त यही है कि अपनी जो उर्दू जबान है बिलखसूस इसको बाकी रखने की कोशिश करनी चाहिए, ये मेरी अपनी नाकिस अर्ज है आपको। जी
बहुत ही अच्छा सिलसिला है, निगरानी शुरा को अल्लाह तबारक व तआला दराजी उम्र बिल खैर आफियत वाली अता फरमाए। आपका मकसद जो है ये बड़ा अजीम है कि नस्लों को संवारना, तो ये जो सिलसिला है इसी के मुतालिक मेरा सवाल है वो ये कि आपने फरमाया कि वालिदैन को मॉरल सपोर्ट देनी चाहिए फाइनेंशियली अगर वो उनसे मुमकिन हो तो, ऐसा भी बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, माँ को दुआ के जरिए, वालिद को बैकअप के जरिए, जिस तरह से भी हो सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ भी सवाल ये है कि बच्चा जो है इन चीजों को समझ रहा है कि मुझे अपने वालिदैन की तरफ से इस तरह से सपोर्ट किया जाए, तावुन किया जाए, मदद दी जाए, लेकिन वालिदैन का माइंड इस हवाले से नेगेटिव है, वो नहीं कर पा रहे, या उनकी सोच नहीं है, या उनका नॉलेज नहीं है, बल्कि वो बाज़ औक़ात ना चाहते हुए या अनजाने में जुल्म कर बैठते हैं। तो अब बेटे को या बेटी को, बच्चों को, औलाद को क्या करना चाहिए, किस तरह से अपना अंदाजे जिंदगी लेना चाहिए, और वालिदैन से फिर उनके साथ कैसा बिहेव हो इस तरह के मामलात के बावजूद, इस पे जरा रहनुमाई फरमाए।
देखिये, वालिदैन ने 1% भी सपोर्ट नहीं किया, तब भी वालिदैन इस बात का हक रखते हैं कि इनकी इज्जत की जाए, इनकी इज्जत की जाए, इनकी इज्जत की जाए, क्योंकि उन्होंने आपको पाला पोसा, बढ़ाया कि अब आप बड़े हो गए, उन्होंने अपना जिम्मेदारी पूरी की है। अब खुदा ना खासा अगर कहीं जिम्मेदारी पूरी करने में भी खुदा ना खासा कहीं वालिदैन ने कोताही की है, तो ये उनका उनके रब का मामला है। औलाद को तो अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करने का ही इरशाद फरमाया गया है, तुम्हें अपने वालिदैन का हुस्ने सुलूक करना है। अव्वल तो एक औलाद को चाहिए कि अपने वालिदैन के लिए बदगुमानी ना करें, क्योंकि कई चीजें माँ बापों को वाजिब या फर्ज नहीं होती, वो अखलाकी तौर पर आपके साथ सपोर्ट करते हैं। एक स्टेज ऐसा आता है कि वालिदैन अखलाकी तौर पर एक आपके साथ सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो इसको इसी तरह रहने देने, मतलब के रहने दें। और कभी कभार वालिदैन सपोर्ट नहीं करते, इसके सपोर्ट ना करने में भी सपोर्ट होता है, यानी औलाद को ये बातों की जैसे जेब खर्ची दे रहे होते हैं तो जेब खर्ची रोक लेते हैं, क्योंकि इसको जेब खर्ची बार बार मैं ही देता रहूंगा तो ये कभी पांव पे खड़ा नहीं हो सकेगा, ये कमा नहीं सकेगा। तो इस तरह बाज़ औक़ात वालिदैन सख्ती करके भी, कुछ तकलीफ देकर भी अपने बच्चों को राहत के ही फेज में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वालिदैन के लिए तो कभी भी बदगुमान नहीं होना चाहिए, अगर वो मॉरली भी सपोर्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आपकी बात नहीं समझ आ रही तो ये क्योंकि मैं अपनी बात नहीं समझा सका हूं। वालिदैन के लिए एटलीस्ट कम से कम अपने औलाद को कभी भी वालिदैन के नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये हमेशा याद रखिएगा। और आप पॉजिटिव रहे अपने वालिदैन के लिए, ख्वाह आपके साथ किसी तरह का भी आपको लगता है कि मेरा एटीट्यूड हो रहा है या रवैया हो रहा है, आपने अगर जिंदगी में अपने आप को अपने वालिदैन के लिए पॉजिटिव रखा, मुस्बत रखा, अच्छा रखा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं मेरे रब ने चाहा, आप कभी जिंदगी में फेल नहीं होंगे। आपको आपके वालिद साहब के साथ, अपने वालिदैन के साथ, मम्मी और अबू के साथ आपका हुस्ने जन और आपका हुस्ने सुलूक इंशाल्लाह आपको दुनिया में कामयाब लोगों की फहरिस्त में शामिल कर देगा इंशाल्लाह। आपको करके देखिए, आप अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।